ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पात्र रविवार 23 फरवरी 2025 के लिए है। विषय मन स्वर्णपथ अयूब। वो जो तेरे संग है वो पूरा ज्ञानी है। उत्तरदायी ध्यान नीति वचन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर ठीक और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वो मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुले न ठहरेगी। उसके मार्ग मन भाव हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। पाठ उपदेश बाइबल में से दानियल। तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धार्मी बनाते हैं वो सर्वदा के नियन प्रकाशमान रहेंगे। सभोपदेशक। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी है जो मुझे बड़ी जान पड़ी। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे, और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरोध बड़े बड़े धूस बनवाए, परंतु उसमें एक दृढ़ बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। भजन संहिता। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाशमंडल उसकी हस्ताकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो उन प्राण को बहाल करती है। यहोवा के नियम विश्वासयोग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्मय है। वो तो सोने से और भावतिक कुंदन से भरकर मनोहर है, वो मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी भरकर मधुर है। दानियल। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनज़र ने ऐसा सपना देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, तूनाहे और कसदी बुलाए जाएं कि वो राजा को उसका सपना बताएं। सो वो आए और राजा के सामने हाजिर हुए। कसदियों ने राजा से आरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चरंजीव रहे, अपने दासों को सपना बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया कि मैं ये आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत सपने को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे, और यदि तुम फल समेत सपना बता दोगे तो मुझसे भांति भांति के प्रदान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके। इस पर राजा झुंझलाया और बहुत ही क्रोधित हुआ, और दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए तो वो महाराज के सपने का फल बता देगा। तब वो भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद किया, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और स्तुति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने ना तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, भेदों का प्रगट करता परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनज़र राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बढ़ा दिया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वो बाबल के सारे प्रांत पर हाकम और बाबल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बनाए। यशाया। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जुबान दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के सम्मान सुनूं, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरुण अपना माथा चकमाक के नियन काढ़ा किया। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधेरे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो? वो यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर के नाम पर आशा लगाए रखे। करंथियों। परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरुण परमेश्वर की घोर बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा के। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमको दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखा ले, परंतु हम में मसीह का मन है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। वो समय आ गया है जब राय और हठ धर्मिता की बजाय प्रमाण और प्रदर्शन मसीही धर्म के समर्थन में बुलाया जाता है, साधारण लोगों को बुद्धि दी जाती है। सभी पदार्थ, बुद्धि, ज्ञान, अस्तित्व, अमरता, कारण और प्रभाव ईश्वर के हैं। ये उसकी विशेषताएं हैं, अनंत दिव्य सिद्धांत, प्रेम की शाश्वत अभिव्यक्तियां। कोई भी ज्ञान बुद्धिमान नहीं, लेकिन उसका ज्ञान है। कोई सत्य सत्य नहीं है, कोई प्रेम प्यारा नहीं है, कोई जीवन जीवन नहीं है, लेकिन परमात्मा है। कोई अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा भगवान सबसे अच्छा है। दिव्य तत्व मीमांसा, जैसा कि आध्यात्मिक समझ से पता चलता है, स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सभी कुछ मन है, और वो मन ईश्वर है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, अर्थात सभी शक्ति, सभी उपास्थिति, सभी विज्ञान। इसलिए सभी वास्तव में मन की अभिव्यक्ति है। परमेश्वर उस बुद्धि से अलग नहीं है जिसे वो श्रेष्ठ मानता है। वो जो प्रतिभा देता है, हमें उसे सुधारना चाहिए। याद रखें, दिमाग मन नहीं है। बौद्धिक क्षमता को मस्तिष्क के आकार से और शक्ति की मांसपेशियों के व्यायाम से मापना, बुद्धि को वश में करना है, मन को नश्वर मानना है, तथा इस तथा कथित मन को भौतिक संगठन और गैर बुद्धिमान पदार्थ की दया पर छोड़ देना है। प्रश्न, बुद्धि क्या है? उत्तर, बुद्धि सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता और सर्वशक्ति मानता है। ये अनंत मन, त्रित्व तत्व, सत्य और प्रेम, का मूल और शाश्वत गुण है जिसे ईश्वर कहा गया है। विज्ञान शब्द ठीक से समझे जाने पर केवल ईश्वर के नियमों और ब्रह्मांड पर उसकी सरकार को संदर्भित करता है, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। इससे ये प्रतीत होता है कि व्यापारिक पुरुषों और सुसंस्कृत विद्वानों ने पाया है कि क्रिश्चियन साइंस उनकी सहन शक्तियों और मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है, चित्रित की उनकी धारणा को बढ़ाता है, उन्हें एकरूपता और समझ देता है और उनकी साधारण क्षमता को पार करने की क्षमता देता है। मानव मन जो इस आध्यात्मिक समझ के साथ जुड़ा हुआ है अधिक लोचदार हो जाता है, अधिक धीरज रखने में सक्षम हो जाता है, कुछ हद तक खुद से बच जाता है और कम प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। मनुष्य की व्यक्त क्षमताओं और भावनाओं को विकसित करने के विज्ञान का ज्ञान ये वातावरण का विस्तार करता है जिससे नश्वर व्यापक और उच्चतर क्षेत्रों तक पहुँच प्राप्त करता है। ये विचारक को अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण की अपनी मूल हवा में उठाता है। जरूरी नहीं कि मन शिक्षक प्राकृतियों पर निर्भर हो, ये अपने आप में सभी सुंदरता और कविता और उन्हें व्यक्त करने की शक्ति रखता है। आत्मा ईश्वर तब सुनाई देता है जब इंद्रियां चुप हो जाती हैं। हम जितना कुछ करते हैं उससे कहीं अधिक करने के लिए हम सब सक्षम हैं। आत्मा का प्रभाव या क्रिया एक स्वतंत्रता प्राप्त करती है जो कि अवैविक की घटनाओं और असाभय होंठों की व्याख्या करती है। प्राचीन पैगंबरों ने दृष्टिकोण को शामिल करके आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी दूरदृष्टता हासिल की, न कि बुराई और गलत तथ्य को दूर करने से किया। भविष्य की निष्ठा और मानवीय विश्वास के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करने से किया। जब विज्ञान में पर्याप्त रूप से उन्नत होने की सच्चाई के साथ समान जैसे शापित किया जाता है तो पुरुष अनैच्छिक रूप से दृष्टता और भविष्य अद्विक्ता बन जाता है जो राक्षसों आत्माओं या लोकतंत्रों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं बल्कि एक आत्मा द्वारा होते हैं। ये वर्तमान दिव्य मन का विचार है। वो विचार जो इस मन के साथ संबंध में है अतीत वर्तमान और भविष्य को जानने के लिए। साइंस के साथ परिचित होना हमें बड़े पैमाने पर दिव्य मन के साथ कमियों को सक्षम बनाता है। सर्व कल्याण की चिंता करने वाली घटनाओं का पूर्वभास दिव्य रूप से परिहित करने के लिए, हां भरूनाहीन मन की सीमा तक पहुंचने के लिए। ये समझना कि मन असीम है, कॉर्पोरैलिटी से घिरा नहीं है, ध्वनि या दृष्टि के लिए कान और आंख पर निर्भर नहीं है और ना ही ये मांसपेशियों और हड्डियों पर निर्भर करता है। मन साइंस की ओर एक कदम है जिसके द्वारा हम मनुष्य के स्वभाव और अस्तित्व की व्याख्या करते हैं। आत्मा के बारे में हम सब सही रूप से जानते हैं कि ईश्वर ईश्वरी सिद्धांत से आता है और ये मसीह और क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से सीखा जाता है। यदि इस विज्ञान को अच्छी तरह से सीखा और ठीक से पचा लिया गया है तो हम सत्य को इससे अधिक सटीक रूप से जान सकते हैं जितना के खगोला शास्त्री तारों को पढ़ सकते हैं या किसी ग्रहण की गणना कर सकते हैं। ये मन की बात पढ़ना ज्योतिषी के विपरीत है। ये आध्यात्मिक समझ की रोशनी है जो आत्मा की सीमता को प्रदर्शित करती है, भावतिक अर्थ की नहीं। ये आत्मा बोध मानव मन में तब आता है जब जब उत्तरार्ध दिव्य मन को उपजाता है। इस तरह के अंतर्ज्ञान से पता चलता है कि जो कोई भी सिद्ध भाव को बनाता और बनाए रखता है वो किसी व्यक्ति को अच्छा करने के लिए सक्षम बनाता है लेकिन बुराई को नहीं। जब आप इस तरीके से मानव मन को पढ़ने और उस त्रुटि को समझने में सक्षम हो जाएंगे जिसे आप नष्ट कर देंगे तो आप उपचार के संपूर्ण विज्ञान तक पहुंच जाएंगे। ये समझ के अहंकार मन है और ये कि एक मन या बुद्धि है। एक बार में नश्वर अर्थ की त्रुटियों को नष्ट करने और अमर भावना की सच्चाई की आपूर्ति करने के लिए शुरू होता है। ये समझ शरीर को समान जैसे पूर्ण बनाती है। ये तंत्रकायों हड्डियों मस्तिष्क इत्यादि को मालिक की बजाय नौकर बनाती है। यदि मनुष्य दिव्य मन के नियम से संचालित होता है तो उसका शरीर हमेशा की जिंदगी और सच्चाई और प्रेम को प्रस्तुत करने में है। रोग के पास ऐसी कोई बुद्धि नहीं है जिसके द्वारा वो अपने आप को एक रूप से दूसरे रूप में स्थान अंतरित कर सके या स्वयं को बदल सके। यदि रोग चलता है तो मन पदार्थ नहीं चलता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसे हटा दें। हर विपरीत परिस्थिति को अपना स्वामी मानकर उसका सामना करें। मन ही सभी क्रियाएं उत्पन्न करता है। मन शारीरिक इंद्रियों का स्वामी है और बीमारी, पाप और मृत्यु को जीत सकता है। इस ईश्वर पदार्थ अधिकार का प्रयोग करें, अपने शरीर पर अधिकार करें और उसकी भावना और कार्य को नियंत्रित करें। आत्मा के सामर्थ्य में विरोधी का विरोध करना अच्छा है। ईश्वर ने मनुष्य को इसके लिए सक्षम बनाया है और कुछ भी मनुष्य में दिव्य रूप से दी गई क्षमता और शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता है। दिव्य बुद्धि द्वारा नियंत्रित मनुष्य सामंजस्यपूर्ण और शाश्वत है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।